युग परिवर्तन और इतिहास में काल विभाजन। कुछ विद्वानों का विचार है कि भारत में जो दो महान क्रांतियां हुई, पहली क्रांति तुर्कों ने भारत पर आक्रमण करके आरंभ की, दूसरी क्रांति अंग्रेजों ने भारत में अपना राज्य कायम करके संपन्न की। तुर्कों ने भारत के जर्जर सामंतवाद का ध्वंस करके यहाँ सामाजिक संगठन, मानवतावादी संस्कृति के विकास का नवीन मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजों ने यहाँ पहली सामाजिक क्रांति की और नए औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया। रोचक तथ्य यह है कि तुर्कों और अंग्रेजों दोनों के मुख्य सहायक भारत के सामंत थे। इन सामंतों की सहायता के बिना भारत में न तुर्क राज्य कायम हो सकता था, न अंग्रेजी राज्य। इतिहास लेखक तुर्क आक्रमण काल को प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की विभाजक रेखा मानते हैं। ये सब बड़े हिंदुत्व प्रेमी इतिहासकार हैं। इनसे पूछना चाहिए, यदि तुर्क आक्रमणकारियों की भूमिका क्रांतिकारी नहीं थी तो एक युग समाप्त कैसे हो गया, दूसरे युग का सूत्रपात कैसे हुआ? प्राचीन भारत का अवसान और मध्यकालीन भारत का अभ्युदय, इससे अधिक युग परिवर्तन का स्पष्ट रूप और क्या होगा? तुर्कों की धर्मांधता और क्रूरता को निरंतर कोसने वाले ये इतिहासकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें युग प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। जहाँ तक आधुनिक आर्य भाषाओं के अभ्युदय का प्रश्न है, साहित्य में उनके प्रतिष्ठित होने का प्रश्न है, वहाँ यह स्वीकृति बहुत अप्रत्यक्ष भी नहीं है। डॉक्टर सुनीति कुमार चाटुर्जा ने लिखा है, यदि तुर्क मुसलमान विजय न हुई होती तो यह संभव था कि आधुनिक भारतीय आर्य लोक भाषाओं का औपचारिक रूप से उद्भव तो हो जाता, किंतु लगता है कि गंभीर साहित्यिक उद्देश्यों के लिए उनकी स्वीकृति में विलंब होता। इस प्रक्रिया का एक अपवाद है बंगाल, जहां जैसे ही स्थानीय मागधी अपभ्रंश ने एक निश्चित बंगला रूप धारण किया, वैसे ही 10वीं सदी से गीतों के रूप में पुराना बंगला साहित्य हमें प्राप्त हो जाता है। जहां तक हिंदी का संबंध है, 13वीं-14वीं सदियों में अभी हिंदी या हिंदुस्तानी का कहीं अस्तित्व नहीं है। 12वीं सदी के अंत में और 13वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र के नाम देव सिंह में पद रचना कर रहे थे। यह तथ्य डॉक्टर चाटुर्जा का ध्यान आकर्षित नहीं करता। इतिहास का अध्ययन करने का एक तरीका और है, यह ध्यान समाज पृष्ठ संख्या 140 व्यवस्था, मनुष्य के खाने पहनने की चीजों के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था पर केंद्रित किया जाता है। विदेशी आक्रमण और उसके द्वारा स्थापित राज्य कहाँ तक समाज व्यवस्था बदलते हैं? समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की व्यवस्था कहाँ तक बदलते हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। इस दृष्टिकोण से न तुर्क युग प्रवर्तक ठहरते हैं और न अंग्रेज। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी के अंत में हुई थी और तब तक वे भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना राज्य कायम कर चुके थे। यह राज्य उन्होंने भारत में अपना माल बेचने के लिए कायम न किया था, उन्होंने यह राज्य कायम किया था भारत का माल विलायत में बेचने के लिए। 1857 ईस्वी से पहले वे सामंतों के एक गुट की सहायता से दूसरे गुट को पराजित करते और उसका राज्य हथियाते रहे। 1857 के बाद उन्होंने पुराने सामंतों को अपने राज्य का प्रमुख स्तंभ बनाया और जमींदारों के रूप में नए सामंत पैदा करके उन्हें भी अपना सहायक बनाया। इसमें क्रांति विरोधी बात तो दिखाई देती है, क्रांतिकारी बात कौन सी है? अंग्रेजों की भूमिका विवाद का एक विषय उस समय के लिए हो सकती है जब इंग्लैंड में प्रौद्योगिक क्रांति सम्पन्न हो चुकी थी। यह कार्य 1800 तक पूरा न हुआ था, इसलिए अंग्रेजी राज्य की क्रांतिकारी भूमिका के बारे में यहाँ और कुछ लिखना अनावश्यक है। जहाँ तक तुर्कों का संबंध है, ये कबीलों के रूप में संगठित थे और सामंती व्यवस्था की प्रारंभिक मंजिलों से गुजर रहे थे। भारत में आकर उन्होंने सामंती व्यवस्था के बदले गढ़ व्यवस्था कायम की हो, ऐसा नहीं हुआ। सामंतवाद के बदले यहाँ पूंजीवादी व्यवस्था कायम की हो, ऐसा भी नहीं हुआ। तब उन्होंने कौन सा युग परिवर्तन किया? वे यहाँ के सामाजिक ढांचे में खप गए। उनसे पहले शक, हूण आदि जो बर्बर जन समुदाय भारत में आए, वे भी यहाँ के सामाजिक तंत्र का अंग बन गए। उन्हीं की तरह तुर्क भी अकबर के समय तक भारतीय बन गए। अकबर ने पहले से ही जो तुर्क जिस प्रदेश में रहे वहाँ की भाषाएं बोलने लगे। उनका धर्म अवश्य भिन्न था, पर उनकी जातीयता नष्ट हो गई थी। अरब तुर्कों से अधिक सभ्य थे, पर सिंध या केरल में वे कोई भी अरबी भाषी उपनिवेश कायम न कर सके। सिंध के अरबों की भाषा सिंधी हुई, केरल के अरबों की भाषा मलयालम हुई। इसी तरह तुर्क और पठान कश्मीरी पंजाबी ब्रज भाषा खड़ी बोली हिंदी मराठी गुजराती बंगला भाषाएं बोलने लगे। यह उनकी तुर्क पठान या अरब जातीयता के परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण था। अफ्रीका में अरब जहां गए वहां उन्होंने अरबी भाषी उपनिवेश कायम किए। तुर्कों ने लघु एशिया में ग्रीक सभ्यता का नाश करके तुर्की भाषी उपनिवेश कायम किया। यही उपनिवेश आज का तुर्की राष्ट्र है। भारत में ऐसा कोई उपनिवेश कायम नहीं हुआ। पृष्ठ संख्या 141। जो लोग अपभ्रंश को आधीरों की भाषा मानते हैं, उन्हें उक्त तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। वैदिक काल से लेकर अब तक भारत में किसी भी विदेशी भाषा का उपनिवेश कायम नहीं हुआ। यूरोप में हंगरी बहुत स्पष्ट एशियाई भाषा का उपनिवेश है। अमेरिका और अफ्रीका में अंग्रेजों, पुर्तगालियों, स्पेनिश जातियों के उपनिवेश कायम हुए। ऐसा भारत में नहीं हुआ। आधीर और उनके साथ राजपूत चाहे बाहर से आए हों और चाहे भारत के हों, भाषा और साहित्य के इतिहास में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भारत में सामाजिक विकास विषम गति से हुआ है। अनेक मानव समुदाय अब भी प्राक सामंती और अर्ध सामंती अवस्था में रहते हैं। यह मानते हुए जहां सामाजिक व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन हुए हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए। वैदिक समाज गढ़ व्यवस्था के विघटन और सामंती व्यवस्था के अभ्युदय का समाज है। गढ़ व्यवस्था की मंजिल छोड़कर सामंती सभ्यता की मंजिल में प्रवेश पहली सामाजिक क्रांति है। जिस समय तोल काप्तियम ग्रंथ रचा जाता है, उस समय तक सामंती व्यवस्था तमिलनाडु में कायम हो चुकी है। इस सामंत युग में केवल तमिल भाषा का अभ्युदय नहीं होता, अन्य आर्य द्रविड़ भाषाओं का अभ्युदय भी होता है। विभिन्न कारणों से जनपदीय भाषाएं साहित्य का माध्यम कहीं पहले बनती है, कहीं बाद को। 11वीं सदी में जनपदों का अलगाव खत्म होने लगता है। जातीय भाषाओं के अभ्युदय के लिए जमीन तैयार होती है। इतिहासकार जिसे मध्य युग की शुरुआत मानते हैं, वह वास्तव में आधुनिक युग की शुरुआत है। इस युग में उत्पादन का पुराना तरीका बना रहता है, पर बहुत सा माल उत्पादकों के अपने काम में आने के लिए तैयार नहीं किया जाता, वरन बेचने के लिए तैयार किया जाता है। बिकाऊ माल देश में ही नहीं, विदेश में बेचने के लिए काफी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। कारीगरों और व्यापारियों के बड़े वर्ग निर्मित होते हैं। इसके साथ समाज में द्रव्य तंत्र और विनिमय का विकास होता है। इस विकास के साथ सामंती व्यवस्था के गर्भ में पूंजीवादी संबंधों का प्रसार होता है। भारत में सामाजिक क्रांति की यह दूसरी मंजिल थी। इंग्लैंड में भी यह क्रांति 14वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक हुई। 18वीं सदी के अंत में इंग्लैंड ने पूंजीवादी की दूसरी मंजिल औद्योगिक पूंजीवाद में प्रवेश किया। भारत में 1800 तक अंग्रेजी राज्य कायम होने से यहाँ का सामाजिक विकास पूंजीवाद की पहली मंजिल व्यापारी पूंजीवाद की मंजिल में रुक गया। जापान में अंग्रेजों का या यूरोप की किसी अन्य जाति का राज्य कायम नहीं हुआ। एशिया में वहाँ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई। वहाँ औद्योगिक विकास उन देशों की अपेक्षा अधिक हुआ जिन पर अंग्रेजों ने अपना राज्य कायम किया था। तुर्कों का आक्रमण उस समय हुआ जब यहाँ व्यापारिक पूंजीवादी के विकास पृष्ठ संख्या 142 के साथ नवीन जातियाँ संगठित हो रही थी। अनेक जनपदों से मिलकर ये जातियाँ बन रही थी और जनपदीय भाषाएं अपना सीमित क्षेत्र छोड़कर जातीय गठन का माध्यम बन रही थी। उदाहरण के रूप में गुजरात की स्थिति से स्थिति ले सकते हैं। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर की भूमिका में कन्हैया लाल माणकलाल मुंशी ने लिखा है कि 13वीं सदी के समाप्त होते होते गुजरात का सूती उद्योग अपने चरम विकास की अवस्था में था। यहाँ का चमड़े का कारोबार भी प्रसिद्ध था। गुड़, शक्कर और भवन निर्माण उद्योगों की प्रगति कम महत्वपूर्ण नहीं थी। बारीक काम करने के लोहे के औजार बनाए जाते थे। मसाले, रंग, चमड़े का सामान, इत्र विदेश व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी। बाहर से इनके बदले सोना, चांदी और घोड़े आते थे। यहाँ के कुछ व्यापारी सुमात्रा, जावा, ईरान आदि से व्यापार करते थे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इन सामाजिक परिस्थितियों से गुजराती जाति का गठन हुआ। यदि गुजराती भाषा साहित्य में विलंब से प्रतिष्ठित हुई तो इसका कारण यह था कि राज्य सत्ता निरंकुश सामंतों और रूढ़िवादी पुरोहितों के हाथ में थी और गुजराती भाषा पर अपभ्रंश का आधिपत्य कायम रहा। इसी तरह अन्य प्रदेशों में सामाजिक विकास हुआ। जातीय गठन के साथ जातीय भाषाओं का विकास हुआ, वे साहित्य का माध्यम बनी। तुर्क तथा अन्य आक्रमणकारी यहाँ की जातियों में घुल मिल गए। इससे यह न समझना चाहिए कि जातीय भाषाओं का विकास सहज गति से होता रहा। तुर्क और पठान शासक ईरानी संस्कृति और फारसी से प्रभावित थे। उन्होंने फारसी को राजभाषा बनाया। कहीं उन्होंने भारतीय भाषाओं को फारसी के बाद दूसरा स्थान दिया और कहीं वह भी न दिया। कोई भाषा अपने प्रदेश में पूर्ण प्रभुत्व पाए और कोई भाषा अन्य भाषा के प्रभुत्व के अधीन होकर सामाजिक व्यवहार का माध्यम बने, इन दोनों की स्थिति में अंतर होता है। द्रविड़ भाषाओं में तमिल और आर्य भाषाओं में मराठी फारसी के इस प्रभुत्व से अपेक्षाकृत मुक्त रही। मराठी में फारसी के बहुत से शब्द प्रयुक्त होने लगे। इससे उक्त स्थापना में कोई फर्क नहीं पड़ता। मराठी भाषियों ने अपने राज्य में फारसी को नहीं मराठी को राज्य भाषा बनाया। यह बात मराठी भाषा और साहित्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण थी। ब्रज प्रदेश में जाट राजाओं ने ब्रज भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। बुंदेलखंड में छत्रसाल आदि राजा अपना कामकाज बुंदेलखंडी में करते थे, किंतु बुंदेलखंडी और ब्रज जनपदीय भाषाएं थी। ये बृहत्तर जातीय क्षेत्र में राजकाज की भाषा नहीं बनी। राष्ट्रीय स्तर पर फारसी का व्यवहार होता था। जो दस्तावेज भारतीय भाषाओं में लिखे जाते थे उनके साथ उनका फारसी प्रतिरूप अथवा मूल रूप भी दिया जाता था। राष्ट्रीय स्तर पर यदि किसी भारतीय भाषा का व्यवहार होता तो होगा तो यह अस्वाभाविक स्थिति अन्य भाषाओं के विकास को भी प्रभावित करेगी। पृष्ठ संख्या 143। यहाँ हम साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की समस्या पर विचार कर सकते हैं। समाज और साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एक ही आधार पर किया जाता है। जो लोग 15वीं या 16वीं सदी के साहित्य को मध्यकालीन कहते हैं वे उस समय के भारतीय समाज को भी मध्यकालीन कहते हैं। उनके लिए अंग्रेजी राज कायम होने पर आधुनिक साहित्य शुरू होता है, आधुनिक समाज व्यवस्था भी शुरू होती है। तुर्क आक्रमण से मध्यकालीन भारत आरंभ हुआ। अंग्रेजों के आक्रमण से आधुनिक भारत की शुरुआत हुई। यदि समाज व्यवस्था पर ध्यान दे तो प्राचीन गढ़ समाजों का अवसान वैदिक काल में आरंभ हो जाता है। वैदिक काल से लेकर लगभग 11वीं सदी तक सामंती व्यवस्था कायम रहती है। इस काल में रचा हुआ साहित्य चाहे संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में हो, चाहे तथाकथित पुरानी बंगला में हो, वह सामंती व्यवस्था में रचा हुआ साहित्य है। द्रविड़ भाषाओं में तमिल और कन्नड़ में रचा हुआ साहित्य इसी व्यवस्था में रचा हुआ साहित्य माना जाएगा। इस सबको मध्यकालीन साहित्य की संज्ञा दी जा सकती है। भारत में जातीय गठन की प्रक्रिया सब जगह एक ही समय संपन्न नहीं होती, फिर भी मोटे रूप से 12वीं सदी को नई जातियों के निर्माण का प्रारंभिक काल मान सकते हैं। इस समय आधुनिक भाषाओं में जातीय साहित्य की रचना आरंभ होती है। समाज और साहित्य का आधुनिक काल 12वीं सदी से आरंभ होता है। सामाजिक स्तर पर इसका लक्षण है सामंती व्यवस्था का विघटन, व्यापारिक पूंजीवादी का विकास, नए सामाजिक संबंधों का प्रसार। साहित्यिक स्तर पर इसका लक्षण है सामंत विरोधी प्रवृत्तियों का उद्भव और प्रसार में मानवतावाद की प्रतिष्ठा। 12वीं सदी में शुरू होने वाली यह सामंत विरोधी क्रांति कई मंजिलें पार कर चुकी है, पर वह अभी पूर्णतः संपन्न नहीं हुई। अंग्रेजी राज कायम होने के बाद सामंत विरोधी विकास निरंतर अवरुद्ध होता रहा है। भारत में जातियों के पूर्ण गठन और देश को आधुनिक राष्ट्र बनाने की समस्या अब भी बनी हुई है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत में अभी तक आधुनिक युग की शुरुआत नहीं हुई।